नारायण 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 गुणै गुणान् सभुञ्जान आत्मप्रद्योतितैः प्रभु मन्यमानम् इदं सृष्टम् आत्मानम् इह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सन्निमित्तानि देहभृत् तत्तत् कर्मफलम् गृह्णन् भ्रमति इह सुखेतरम् इत्थम् कर्म गतिर्गच्छन् बह्वा भद्रवहा पुमान् अभूत् सम्प्लवात् सर्ग प्रलयावश्नुते वशः धातु पप्लव स आसन्ने व्यक्तम् द्रव्यगुणात्मकम् अनादिनिधिनः कालो ह्यव्यक्तायापकर्षति नारायण नारायण नारायण। भगवान की माया की चर्चा चल रही है, इसी ब्याज से हम लोग भगवान के गुणों का, सामर्थ्य का और लीला का चिंतन भी कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में आया है कि एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टा पंच धातु भी एक धातस्धात्मानं विभज्यते गुणान्। वो परमात्मा ही इन महाभूतों में द्वारा सृष्टि बना करके और अपने आप को उसमें प्रविष्ट कर देता है, और फिर एकधा माने मन के रूप में, दसधा माने पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रियों के द्वारा अपने को विभक्त करके गुणों को जुषते माने भोगते हैं। तो क्या होता है, तो गुणैः गुणान् सभुञ्जानाः आत्मप्रद्योतितैः प्रभुः मन्यमानम् इदम् सृष्टम् आत्मानम् इह सज्जते। उसमें प्रवेश कर गए थे भगवान, तब तक तो कोई बुराई नहीं थी, भोग भी कर रहे थे, तब तक एकदम ठीक है। गड़बड़ क्या हो रहा है कि ये जो इंद्रिय हैं और ये जो विषय हैं, इंद्रिय जड़ है, विषय भी जड़ है, लेकिन परमात्मा जब उसके अंदर प्रविष्ट हुआ है तो आत्म प्रद्योतितई ही, आद्य प्रद्योतित माने भगवान ने ही उनको चेष्टावती बनाया है, चेष्टा करने लायक बनाया है। तात्पर्य क्या है कि अगर आंख में परमात्मा की सृष्टि हट जाए या परमात्मा की शक्ति हट जाए, तो चाहे कि तेरे गोरी तेरे नैना बड़े बड़े, वो सब बड़े बड़े नैना किसी काम के गोरी के नहीं रह जाएंगे। तो इसी तरह से अन्य इंद्रियां भी हैं, तो गुणैः माने पहले वाली गुणैः माने इंद्रियां। गुण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गौण है, प्रमुख नहीं है। जो प्रमुख, जो मुख्य होता है उसको प्रमुख कहते हैं, जो छोटा उसको गौण कहते हैं। तो ये इंद्रियां गुणई माने इंद्रियों के द्वारा बांधने वाली भी ये इंद्रियां ही हैं। इनसे गुणान माने गुणों को, ये रूप रस शब्द स्पर्श ये सब, इन गुणई ही आत्म प्रद्योतितई ही माने अपने द्वारा प्रद्योतित, वो जो प्रविष्ट हुआ है परमात्मा, वो गुणई इंद्रियों के द्वारा गुणान भुंजाना गुणों का उपभोग करता है। कोई बुराई नहीं, इंद्रिया बनी है उपभोग करो, ठीक है। गड़बड़ी का मूल कहां से हो रहा है, वो ये है, मन्यमानः इदं सृष्टम् आत्मानम् इहि सज्जते। बस यहां से गड़बड़ी का श्री गणेशाय नमः शुरू हो गया। अब जब देहाभिमानी जीव हो गया है तो अंतर्यामी के द्वारा प्रद्योतित गुणों को भोगते हुए अपने आप को देहात्मानम मन्यमाना, मैं देह हूं, ऐसा सज्जते सज्जते माने उससे सट जाता है, चिपक जाता है, समझने लगता है। मतलब शरीर अलग है, उसमें घुसा है वो, इंद्रियां अलग है, उसमें वो प्रविष्ट हुआ है, विषय भी एकदम अलग है, लेकिन वही हमने अपनी चाची वाली घटना बनाई थी कि 3-2-5 का खेल खींच खेल रहे थे, हमने उनसे हुक्म कैका खींच लिया तो उनको लगा अरे मेरा ही सब कुछ खींच दिया, मैं क्या करूं, उठा के सारे ताश के पत्ते फेंक दिए मेरे पर, ले तुम ही खेलो। हमको अब तक वो घटना याद है। हे परमात्मा, ताश के पत्ते में इतने मशगूल हो गए कि वो ले मैं हूं ये। तो आत्मानम इह मन्यमाना, मैं शरीर हूं, ये अपने आप को समझने लग गया। और जब अपने आप को समझने लग गया तो वो सोचता है मैं ही भोग भोग रहा हूं। अच्छा चलो भोग रहा है अपने आप, तो सोचता रहे उससे क्या बिगड़ता है। तो उसके फिर पीछे जो अच्छी वस्तु लगती है उसके प्रति आकर्षण, और जो अच्छी वस्तु नहीं लगती उसके प्रति विकर्षण। जो हमको अच्छा लगता है उसके प्रति राग, जो हमको अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष। ये यहां से शुरू हो गए जब शरीर को हमने अपना आप मान लिया। तो अब क्या करता है, देह व्रतम जीवः, भोग सिद्धि के लिए कर्म भी, कर्मेन्द्रियई सन्निमित्तान उत्तर देह हेतु वासना सहितानि कर्माणि कुर्वन् सुखेतरम सुखम। गड़बड़ क्या हो गई, कर्माणि कर्म भी कुर्वन्, कर्मों से कर्म करता हुआ, इंद्रियों से कर्म करता हुआ, और काहे के लिए, सन्निमित्तानि, सन्निमित्तान माने हम ये काम इसलिए कर रहे हैं। वो लिखा है कि मंदोपी न प्रवर्त, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। मतलब निकल गया तो जितने काम कर रहे हैं किसी न किसी मतलब से ही कर रहे हैं। ये मैं करूंगा तो इसका ये फल होगा, ये करूंगा तो ये फल होगा। अरे और तो और भगवान की पूजा भी करते हैं तो भी मैंने किसी के घर में गया उसके बर्थडे के उपलक्ष्य में, और वहां पर उसके घर में एक बड़ा सुंदर सा वो एक मॉडल रखा हुआ था चांदी का, उसको उठाया कपड़े से पहुंच करके हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल द बेस्ट, और उसी की वो मूर्ति उसको पकड़ा दी और बड़ा जोर से थैंक यू कह रहे। तो वो बड़ा गौर से कहेगा वहां देखा एक दूसरी आ गई तो मेरी है, तो मेरी ही चीज मुझे दे करके मेरे पर रुआ मार रहा है, हंसने की बात है ना। लेकिन इसी तरह भगवान की दी हुई वस्तु को उठा करके अब भगवान को अर्पित करते हैं तो माय डियर थोड़ी वही बात हो गई कि नहीं हो गई। नहीं, हम सोचते हमने भगवान को दिया। मैं बाबूलनाथ मंदिर जाता हूं रोज लगभग, यहां से संबंध भी अच्छे मैंने उस बाबूलनाथ को जो केले चढ़ते हैं उनकी क्वालिटी मेरी आंखों से हटती नहीं, मैं क्या करूं। वैसे दोष है किसी की पूजा में दोष देखना, ये तुम्हारी बीमारी है, नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, हमारे बाबूलनाथ और उनको कोई जब शायद वो वैसा तो नहीं होगा कि केले वाले के जो केला नहीं बिकते तो फेंक देते तो वो उठा लाते हैं क्या। लेकिन हां एक घटना तो सच्ची बता दो तुमको, हम कलकत्ते में गए थे, यहीं से हमको हरि भाई ने प्रेरणा दी थी कि हां जगह अच्छी आप हो आओ जा करके। वो उसका जो भगवती संचालन कर रहे थे, जो परिवार संचालन कर रहा था, बड़ा साधु सेवा, साधु सेवा भी कर रहा, भगवान की भी सेवा कर रहा था और सत्संग की सेवा भी कर रहे। अब जो लोग जान जाएंगे तो जान जाए कोई चोरी तो की नहीं, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, सच बात कह रहा हूं। तो हम जहां जाएंगे लोग प्रेम हमसे करेंगे ही, वो निश्चित बात है। वो जमादार से लेकर के और चेयरमैन तक सब प्रेम करेंगे, निश्चित है। वो उसमें हमको कुछ करना नहीं, अपने आप करेंगे ही। तो वहां पर भी सब उसी तरह प्रेम। तो दूध वाला भी हमसे प्रेम करने लगे थे, दूध देता था। हमको मालूम नहीं ये प्रसंग कैसे शुरू हुआ, लेकिन उसने हमको बताया यहां तीन तरह का दूध आता है, एक 10 रुपए किलो वाला, एक 12 रुपए किलो वाला, या कुछ रेट थोड़ा बदल सकता है, और एक 16 रुपए किलो वाला। तो मैंने पूछा कि कोई क्या अंतर होता है, तो भगवान के लिए 10 रुपए किलो वाला दूध आता है, आपके लिए 12 रुपए किलो वाला दूध आता है। अब महंगा वाला समझ लो किसके लिए जाता है, ये सच्ची घटना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उतना तो हम निभाया है उस बार वाला, दोबारा आप उधर झाके नहीं भी देंगे, वो बिल्डिंग मैंने नहीं देखी, कलकत्ते कई बार गए उधर हम गए नहीं। ये सच्ची बात है कि वो साधु सेवा और भगवान की सेवा करने वालों की ये, और सत्संगी हो ऊपर से सत्संगी, और उनके यहां की ये घटना है 10 रुपए किलो का दूध भगवान के लिए। उनसे ज्यादा रेस्पेक्ट हवाली तो हवाली 12 रुपए या 14 कुछ होगा, ऐसा ही कुछ था उस समय, यही रेट था। और बाकी जो था वो 16 रुपए किलो का, 16 रुपए किलो तो मुझे याद है। हमारा वाला दूध 12 रुपए किलो था कि 14 था उसमें हमको थोड़ा डाउट, भगवान का 10 रुपए किलो वाला दूध, असली दूध और एकदम असली दूध, और हम भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं। देखो एक चीज हम बताएं, ये इस टॉपिक से थोड़ा अलग है जरूर, लेकिन फिर भी समझने लायक बात है। भगवान को जो अर्पित करो वो प्रेम से अर्पित करो, भाव से अर्पित करो, ये ध्यान रखना। जो भी अर्पित करो, अगर एक फूल है तो उसी को बड़े प्रेम से अर्पित करो। अब भगवान को केला चढ़ा रहे हैं, वो यहां तो हमको मालूम नहीं, हम जब पहले थे दूसरी पोशाक में तब दुकान पे गए थे तो एक आदमी सुपारी मांगने के लिए आया था। ये सच्ची बात ये भी है, कौन सी सुपारी, पूजा के लिए चाहिए कि खाने के लिए चाहिए? इसी तरह पूजा का कपड़ा भी अलग मिलता है, कपड़े वाले जानते हैं। यार सब तो भगवान का, ये देख लो। लेकिन हुआ क्या है, उसमें राग हो गया, उसमें द्वेष हो गया। जिसमें राग है उसके प्रति एक दूसरे प्रकार से संकल्प मन में होगा कि ये न जाए हमारे पास से, या हम उसके पास किसी तरह पहुंच जाएं। और जिससे द्वेष है उसके लिए चाहते हैं कि ये किसी तरह हट जाए, या हम इससे किसी तरह हट जाएं। ये वस्तु हमको प्राप्त हो जाए इसके लिए हम ये कोशिश करें। तो ये जो है कर्माणि कर्मी कुर्वन सन्निमित्तानि, सन्निमित्तानि माने निमित्त के द्वारा, संकल्प के द्वारा, सन्निमित्त माने सीधे सीधे समझ लो संकल्प के द्वारा। तो अब तुम जब भगवान को बढ़िया वाला केला जब अर्पित कर रहे हो, तो तुम्हारा मन का संकल्प क्या है, ये तुमने ध्यान दिया है? हु इज इंपॉर्टेंट, भगवान इज इंपॉर्टेंट और योर मनी इज इंपॉर्टेंट? भाई तुम पैसा, मैंने केला सस्ता क्यों लिया, दो पैसे बचे, दो पैसे बचे इसके माने भगवान से पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तभी तुम बचा। हाँ, तुम्हारे पास नहीं तो किसने कहा तुम खेला चढ़ा भी जाओ। अरे जले न चुल्लू, जल से चुल्लू के नवा, एक चुल्लू जलते तो। अब एक दिन हमने जैसे कहा था, लोग घबरा जाते जब मैं कहता हूं कि हमारे भगवान से जैसा बेवकूफ तो दुनिया में कोई मिलेगा नहीं, और उसको भी अगर तुम लोग बेवकूफ नहीं बना पाते हो तो 9 लाख गायें जिसके घर में हों और वो छछिया भर छाछ भी अगर नाच नाचता है, उसको क्या कहो गिरीश भाई, बताओ है बेवकूफ की नहीं? इतनी गायें घर में हैं, मेरे ख्याल से वो अगर वो बर्तन भी मांजना शुरू करे, फर्श धोना शुरू करे छाछ से, तो भी एक्स्ट्रा होएगी। और ताही अहीर कि छो हरियां छछिया भर छाछ पे, तो ऐसा तो वो बेवकूफ है। और ऐसे बेवकूफ को अगर हम बेवकूफ नहीं बना पाते हैं तो हमसे बढ़ के, मैंने नहीं कहा, तो कोई नाराज मत हो, मैंने नहीं कहा, कोई रिकॉर्ड है दिवाई पर, मैंने आप लोग अपने आप समझ लो क्या। वस्तु इज नॉट इम्पॉर्टेंट, केला इज नॉट इम्पॉर्टेंट माई डियर, सुपारी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तुम्हारे मन का भाव क्या है? सड़ा हुआ केला दोगे तो सड़ा हुआ फल मिलेगा, भगवान नहीं देंगे, भगवान सड़ा कल मिल, तुम्हारा कर्म तुमको फल देगा, यही लिखा हुआ है। कर्माणि कर्म भी कुर्वन सनिमित्तान, सनिमित्तान माने संकल्प, देह व्रत माने देह को अपना मानने वाला, देह व्रत माने मनुष्य होता, जीव होता है, लेकिन यहां देह को अपना ऊपर लाद लेने वाला, ये ज्यादा बढ़िया अर्थ है। अपने ऊपर लाद लिया माने अपने आप को समझ लिया, तो उससे क्या होता है, सन्निमित्तानी संकल्प करता है, संकल्प से वासना होती है, या वासना के हिसाब से संकल्प होता, दोनों ही बातें चल सकती हैं। तो ये जो वासना है वो तुम्हारे नई देह की तैयारी हो गई, जैसी जैसी वासना होगी भगवान कहेंगे तुमको ये ज्यादा पसंद है तो चलो इस योनि में ये सुविधा ज्यादा है, मौज ले लो। वो तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार दया करता है कि ले भाई तुझे ये कीचड़ ज्यादा पसंद है तो बना दिया, चल ले मौज। भाई भगवान की इसमें क्या गलती, तुम्हारी वासना है तो लिखा है उत्तर दे हेतु वासना सहितानि कर्माणि कुर्वन, उस वासना के कारण दूसरा शरीर कैसा मिलेगा ये निश्चित हो जाता है। और ये कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं, हमने करना शुरू कर दिया। तो होता क्या है, तो जब हमने कर्म किया वासना सहित तो तत्त कर्म फलन ग्रहणन, जो काम किया उसका फल भोगेंगे। अब वो जो काम किया था उसका फल भोगते हुए फिर दूसरा कर्म करेंगे, फिर उसका फल भोगते हुए चौथा कर्म करेंगे। तो ये तो तत्त कर्म फलम ग्रहणन, उन उन कर्म फलों को ग्रहण करता, भ्रमति ही, भ्रमति माने घूमता है, लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। सुखेतरम, सुखेतरम माने सुखश्च इतरश्च सुखेतर तम सुखेतरम, सुख को भोगता है और दुख को भी भोगता है। ये सुख और दुख भी वासना के हिसाब से है माई डियर। एक 25 साल पुरानी शराब आती है, मुझे उसकी बोतल का रंग तो याद आ गया, मैरून कलर की है ऐसे मोटी सी, नाम मैं जोर लगा रहा हूं तो भी याद नहीं आ रहा है, संस्कार कमजोर है उसके। वो शराब की बोतल अगर कोई हमको लाके दे तो हमारे संग उसकी क्या अनुभूति होगी। और एक आदमी जो उसकी कदर जानता है उसको भेंट की जाए तो बताओ वो शराब की बोतल सुख दे रही कि दुख दे रही है। हम तो विचित्र बाबा हैं। स्कॉटलैंड गए थे तो विस्की की फैक्ट्री में भी हमको बुलाया गया। आई वॉज गेस्ट गए, वो पहले ही बता रहे हमको कोई शर्म थोड़ा आती है। तो वहां गए स्कॉटलैंड में, स्कॉच विस्की बन रही थी बड़ी बढ़िया, उसका अलग से माल्ट थी, वो सब हमको दिखाई गई प्रोसेस। और जब हम पढ़े लिखे हैं ही सब जानते हैं, अपनी बड़ाई करने में क्या नुकसान है, तो हम सब चीजें क्वेश्चन करने लगे, कुछ वो भी करने लगे। हाँ, इतनी बड़ी फैक्ट्री में मैंने पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगाया, एक भी मक्खी देखने तक को नहीं। मैं कह एक आध मिल जाए तो चलो कम से कम रिकॉर्ड हो जाएगा, एक मक्खी नहीं, पूरी फैक्ट्री में कहीं एक मक्खी नहीं, जबकि माल्ट वहां है। तो किण्वन उन्वन हो रहा था, तो जब हमने कुछ चीजें पूछी कुछ हुआ तो वो बड़ा खुश रखता है, ये तो गहरा जानकार आदमी है। और फिर जब आकर के फाइनली हमको ऐसे प्यारे ग्लास के अंदर, और उसने बताया सबसे सुपर चीज हमारे यहां की है, आपके जैसे कदरदान को मैं, आप जरा इसको टेस्ट करके बताइए। तो ये मैं गप नहीं सुना रहा हूं, बड़े आदर उसके चेयरमैन ने हमको प्रस्तुत की। तो हमने मना किया तो उसको आश्चर्य हुआ, बड़ा बढ़िया। वो कप थोड़ा, वो भी बता दें, ऐसे करके कप थोड़ा आगे ऊपर से मोड़ दिया जाता है। वो क्यों मोड़ा जाता मालूम है, कि उसको पीते समय उसकी फ्लेवर नाक के अंदर जाए, ऊपर न उड़ जाए। तो है चीज, क्या बात। लेकिन अपने काम पीते नहीं है तो उसको आश्चर्य लगा, ये कौन से लोक से आया है भला बताओ, इतनी कीमती की जो हमारे यहां की सबसे नायाब वस्तु है, लोग देखते हैं। और अगल बगल में जो लोग थे वो भी पहले तो बड़ी उस दृष्टि से हमको देख रहे, कितना आदर इनका है। और जब वो वाली चीज हमको प्रस्तुत की गई तो एनवी कर रहे थे, वाह इस अजूबे से जानवर को आदमी को इतनी इज्जत। तो जब हमने नहीं पिया तो उसको आश्चर्य हुआ, उसको दुख हुआ कि देखो हमने इतने प्रयत्न दिया इसने लिया नहीं। अब बताओ उतनी प्यारी चीज जिसकी खुश, हाँ उसने बताया ये भी ये उसकी स्पेशलिटी थी। वहां फिर उसके दाम उनने कहा मैं 110 प्रकार की शराबें केवल सूंघ करके आपको बता सकता हूं, ये इस क्वालिटी की, ये इस क्वालिटी की, उसकी नाक उसकी इतनी ट्रेन कमाल की नाक उसकी। तो उसने सुपर चीज हमको ला के दी। अब हमको उसकी प्राप्ति से सुख नहीं हुआ, किसकी कमी, शराब में कुछ कमी थी क्या, वासना। जिसके मन में उसकी स्कॉच की, और स्कॉच भी हुआ ली स्कॉच जो, अब वो विशेषण हमको बहुत यादवाद नहीं है, लेकिन वो कप हमको जरूर याद है, क्या बढ़िया एकदम क्रिस्टल का था। और उसने किस तरह से प्रस्तुत किया था प्यार से चेयरमैन ने, थोड़ी हमको दया कर थोड़ी पी देते थे, क्या बिगड़ता वो कुछ हो जाता। राम 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 राम। ये तो सुखम क्या इतरम क्या सुखे इतरम, किसी तो ये लिखता है कभी सुख पाता है कभी दुख पाता है। ये यहां के अर्थ ये है, कभी सुख पाता है कभी दुख पाता अपने कर्मों से। हम ये अर्थ कह रहे हैं किसी किसी को वो वस्तु सुख देती हैं और किसी किसी को दुख देती हैं। अब अगर वही किसी अच्छे आदमी को दी गई होती चीज उसको कितना सुख होता, देखो चेयरमैन ने अपने हाथ से, और ये इतनी चीज उसने बता रखा। हमारे यहां गवर्नमेंट के आदमी आके सील लगा जाते हैं, वो इतना बड़ा बड़ा पाइन का वो ड्रम होता है, अलग प्रकार की पाइन है वो लकड़ी, उसके अंदर को धर दिया जाता है और इसके बाद फिर वो सील हो जाता है, इतने बाद फिर उसको फिर वो डिस्टिल करते हैं। तो इतनी पुरानी दृष्टि होने के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग रख लेते हैं कि हमारे पास 100 साल पुरानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वंस इट इज डिस्टिल्ड फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सुखे तरम, हमको सुख नहीं मिला, और कोई होता तो कितना खुश होता, वाह क्या चीज मिली है। हमको ढोकला बड़ा पसंद आया और हमारे भजन दाजी तब से आज तक लौट के ही नहीं आया। ढोकला खा खा करके सुखे तरम। तो इनके फलों कर्म फलन ग्रहणन, ये मतलब ये आप इसको ऐसा समझो, ये 84 का चक्कर हम बनाते हैं, हम फंसते हैं, दूसरा तो नौकर फंसता है। हमने ये वासना की, उस वासना के अनुसार हमको इतर शरीर मिलेगा। अगर हमने वासना न की होती तो इतर शरीर हमको नहीं मिलता। यही माया है। हम खुद ही अपने बंधन के, और बंधन न हो तो मोक्ष के, हम ही हेतु है, दूसरा कोई नहीं। तो इत्थम कर्म गतिर गच्छन बहवा भद्रवाह पुमान अभू संप्लवा सर्गा प्रलया वस्नुते वशा। ये मतलब कोई कर्म किया तो उसका फल हुआ, उस फल को भोगने के लिए फिर कर्म करना पड़ा, उस कर्म का फल भोगते हुए जो कर्म किया उससे फिर दूसरा कर्म हो गया। फिर तो इसको इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं फिलॉसफी की भाषा में। हम लोग कहते हैं अनवस्था, कि एक के बाद एक के बाद एक कर्म कर्म का फल, कर्म कर्म का फल, कर्म का कर्म फल। इत्थम कर्म गतिर गच्छन, गच्छन माने जाते हुए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए गच्छन लगाया है। क्षत्रि और सानच प्रत्यय जहां क्रिया होती हुई होती है वहां लगाए। खादन गच्छति, हसन जलपति, ये उस तरह से। तो गच्छन कर्म गतिर गच्छन बहवा भद्रवाह पुमान, ये इस प्रकार सुख और दुख को भोगता हुआ आदमी देव मनुष्य आदि ऊंची नीची कोनियों में जाता हुआ परवशा पुमान आभू संप्लवात, आभूत संप्लवात आ माने सीमा, संप्लव माने इनका अलग अलग होना, माने जब तक ये सब तत्व अलग अलग नहीं हो जाते हैं, मतलब प्रलय काल तक। आभू संप्लवा सर्गा प्रलया वश्नुते वशः, बस एक कर्म का फल भोगने के लिए दूसरा कर्म, दूसरा कर्म का फल तीसरा, तीसरा ये करता हो अवशः, अवशः माने उसकी चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि जो पहले कर्म किया उसका फल भोगना ही है। जब उस भोगते हुए कर्म को करोगे तो दूसरा कर्म होएगा ही, फिर उसको भोगना पड़ेगा, तो निकले कैसे? इसलिए लिखा अवशः माने उसका मजबूर, मजबूर हो करके जब तक प्रलय नहीं होती है तब तक इसी तरह आभूत संप्लवात प्रलय काल पर्यंत इसको परवश तक भोगता रहता है। ये भगवान की माया है। माया कैसे समझ गया ना हम लोग कि हमारा ही किया हुआ है। धातु पप्लव आसन्य व्यक्तम द्रव्य गुणाकरम अनाद निधन कालो है वक्तायापकर्षति। ये कर्म करते हुए कोर्ट में एक अपराध होता है अनजाने का, उसका अलग दंड मिलता है, और एक जानने पर भी किया जाता है उसका दंड अलग होता है। मालूम है आप लोग अब इसके जानकार हो गए हो, समझे? कि हम अपने क्या है आत्मैव आत्मनः बंधुः, आत्मैव रिपु आत्मनः, अपना सबसे बड़ा मित्र कौन है, और उसी तरह अपना सबसे बड़ा शत्रु कौन है। अब कौन सा उदाहरण दें इसका आपको समझ में आए, जिंदगी सारे उदाहरण आपके भी भोगे हुए, हमारे भी भोगे हुए हैं, अपने आप लोग हम लोग अंडरस्टूड कर लें छुट्टी। लेकिन ये हम जरूर सावधान करेंगे, कर्म करते हुए सावधान जरूर रहा करो। पता नहीं चलता है लेकिन असावधान अगर हुए तो कर्म के संस्कार पड़ जाते हैं। देखो हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हमारे पहले जिस घर में शरीर का जन्म हुआ, पहले बरातें जब विवाह हुआ करता था तो बारात तीन दिन तो मिनिमम रहती थी, पांच दिन भी रहती पहले, और पहले तो सात सात दिन रहती थी, भगवान तो पता नहीं महीनों रहे थे क्या अयोध्या में। हमारे लाला को कहीं ससुराल में ज्यादा रहने को नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने अपना रेजिडेंस अब परमानेंट रेजिडेंस लक्ष्मी जी के घर में कर लिया। क्या करें ससुराल में, अब जगह कहीं रहने को नहीं मिला, 16108 में किसी के यहां तो उनको ससुराल में सुखपूर्वक रहने को मिला, कहीं नहीं मिला। राम जी को तो खूब मिला, इसीलिए तो हम बारात में जाते थे तो बढ़िया से बढ़िया स्वागत होता था, बारातियों का स्वागत। और उस समय ये भैंस का सानी लगाने का परंपरा नहीं था, भैंस की सानी समझते हो, वो सब चारा वारा इकट्ठा करके मिलाकर धर दिया जाता, भैंस अपने आप जाती है मुंह मार मार के खाती रहती है। तो ऐसा ये जो भैंस का जैसा चारा नहीं परोसा जाता था, वो लगा दिया चरही में, क्या हाँ कि भैंस की जैसे सानी लगी धरी, अब अपने आप मुंह मारो खाओ, कोई झूठा ना कोई सूखा साहब उसी से निकाल रहे खा रहे हो, ये नहीं चलता था, ये भैंस की सानी नहीं चलती थी, अपने हाथ कहते। अरे भाई साहब कमाल हो गया, आपने भी तो सब सामान तो रखा छुआ तक नहीं आपने, क्या बात कुछ अच्छा नहीं बना है क्या, और ये सब झूठ है, बोलने वाला भी ज्यादा है, मैं झूठ बोल रहा हूं सुनने वाला भी, उसका आग्रह केवल इतने भी आप और ले लो बस। तो ऐसे आग्रह से प्रेम से खिलाते थे चकाचक, और समय कोई डायबिटीज वायबिटीज पता नहीं, पहले इतनी थी भी नहीं डायबिटीज वगैरह क्या या पता हमको मालूम नहीं, सब उतना पैदल वैदल चलते थे। अरे इसके लिए ये तो तुम्हें मतलब ही समझो, टॉयलेट भी जाते तो 3 किलोमीटर तो जाना आना पड़ता ही था मिनिमम, नहीं तो उसके पहले कोई बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो सब खाते थे चक, तो खाया पिया, और खारी समय क्या तो दो चार लोग जो सत्संगी होते थे वो तो कोई अपने एक तरफ बैठ करके सत्संग करते थे, और उनको ज्यादा तो आउटकास्ट होते थे, अरे लगे हुए लगे रहते दिल को अपने, और बाकी जो समझदार लोग थे उन आउटकास्ट से अलग, वो कोई ताश खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, और कोई एक आजने नावल पढ़ रहे हैं कुछ, ज्यादातर ताश खेली जाती थी। तो एक ताश का खेल हमको पहले 29 और कोट पीस ये दो खेल आते थे, 3-2-5 आता था बस टोटल, अब एक और बढ़ गया उसमें जो हम सुनाने जा रहे हैं। तो उस समय वो खेल हमने जिंदगी में पहली बार देखा था, वो हम तो गांव क्या गांव का वो धर्मशाला जिसमें हम लोग ठहरे थे उसका वो कोना हमको याद है कहां पर वो खेल खेला जा रहा था, इतने दृढ़ संस्कार हैं। एक बार तो वहां वही ये वाला आता था जो एक एक करके दिया जाता वो खेल हो रहा था, और तीन तीन बटे पत्ते, हम क्यूरियस होके देखने लगे ये कौन सा खेल है, और इसमें कोई चाल भी नहीं चल रहा है, उनमें ताश की गड्डी फेंकने में या पैसा फेंकना है, ये कौन सा खेल है, हमने पहली बार देखा था। तो बड़े गौर से देख उस वो हमको विशेषता नहीं बोलती थी ऐसे तो फिर धीरे से पता ना धीरे से ऐसे कर रहे थे क्या पत्ता बदल जाता है क्या होता भाई कोई एक्सपीरियंस आदमी हो तो हमको बता देना मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी वरना मैं ऐसे ही अज्ञानी रह जाऊं वो धीरे से क्यों पत्ता खेलते ऐसे क्यों करते वो आपको कोई सिखा देना नहीं तो भगवान पूछेगे तूने पूछा क्यों नहीं था तो मैंने जिज्ञासा तो कर दी है अब उसका समाधान आप लोग करो न करो आपकी इच्छा कर ऐसे और मुझे कोई कहीं टांग पैर नहीं लग रहा कोई पत्ता चल नहीं रहा कोई ये नहीं चल रहा कोई कहता मैं गड्डी में जा रहा हूं तो उठा के गड्डी में चला गया कुछ पैसा फेंक करके और एक जने फिर दो तीन चार ये तो चाल फिर चाल फिर शो ये सब एक दिन के लिए हमारी पढ़ाई है तो हम ये देख रहे थे तब तक इस शरीर के पिता ने वहां से देख लिया चलो हटो वहां से तो उन्होंने कहा हटो वहां से अब हम लोग उस समय तो जिंदगी में टोटल शायद हमारे बाप पिता से हमारी बातचीत हुई होगी टोटल पूरी जिंदगी तो कुछ घंटे हुई होगी हम लोग अपने पिता से बात बात नहीं करते थे डरते थे कुछ काम है उनसे कहना हो तो किसी और माध्यम से सबसे बढ़िया माध्यम उनसे कह दिया और तो इसी से काम निकाल लेते थे तो उन्होंने कह दिया तो वहां खड़े हम चले गए लेकिन हमारी अथातो ताश जिज्ञासा बनी रही ये क्या खेल है किमिदम तो किमिदम जो मन में समाधि जो शास्त्रों लिखा भाई किमिदम हमारे हुआ तो जब चले गए और हमको मालूम था वो गए हैं इस तरह का मतलब वो जंगल जाने के लिए इशारा है जाने वो चाहते तो डेढ़ घंटे से पहले आएंगे नहीं तब तक हम देखेंगे तो धीरे धीरे और फिर हमको समझ में आ गया ये खेल क्या होता है एक 10-15 मिनट खड़े हुए होंगे कि एक दो तीन या तीन चार पांच हो जाएं तो बहुत बढ़िया होता है और जोड़ा अगर किसी हुक्म के साथ बेगम के साथ ज्यादा बड़ा है गुलाम के साथ छोटा है इत्यादि इत्यादि इतनी विद्या हमने सीख ली भी जब सीख ली तो हमारे मन में आया कि यार दो चार चाले या खेल के देखा जाए क्या बुरा है बस ये भगवान की कृपा है जिसके कारण आज हम प्रेमपुरी में बैठे हुए हैं हमने वो खेल खेला नहीं और उठ करके वहां से चले आए क्योंकि ताश के खेल में जुए में कोई जीतता है हमको मालूम नहीं है हारने वाला तो हारता ही है जीतने वाला भी हारता ही है वो रख नहीं सकता वो पैसे वो ताश में जीते हुए पैसे ताश में घुसते हैं और ऊपर से लेके घुस जाते हैं तो जब हमारे मन में आया कि चलो ये एक चाल चल के देखे तो हमको अपने पिता की बात याद आई हटो वहां से हमारे मन में ये प्रश्न हुआ था कि मैं कोई खेल नहीं रहा था मैं कुछ कर नहीं रहा था कि हमको हटा क्यों दिया उन्होंने किमिदम क्या बात है जो हमको हटाया गया तब हमको पता चला ये संस्कार है वही कर्माणि कर्मिको सन्निमित्तानि ये देहांतर का जो संस्कार उत्पन्न होता है आज उतने साल बीत गए हमको अब तक उनकी चेष्टा तक याद ऐसे लेकर के खेला हमने कभी नहीं खेला ये अब तुम लोग बता दें बस वही दैट वॉज द लास्ट कोर्स इसीलिए मैं पूछ रहा हूं अगर कोई हमको बता दे ऐसे धीरे धीरे क्यों करते हैं तो हम सीख जाएंगे वो जरा रेफ्रेशर कोर्स हो जाएगा हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वो संस्कार आज तक हमारे नहीं मिटे हैं इसलिए क्या फर्क पड़ता है जरा देख लिया क्या फर्क पड़ता है जरा एक बार कर लिया बस ये फर्क पड़ता है कि वो संस्कार दिमाग में घुस जाते हैं और समय पाकर के इसलिए कोशिश करके भी गंदे संस्कार हमारे मन में माने सोचना भी बुरा है इसलिए सावधान किया अपने जीवन की घटना बता करके कि अगर कुसंस्कार वाली चीज है उनको देखो भी नहीं हमसे कई लोग कहते हैं महाराज आप डिस्कवरी चैनल देखने के बड़े खुश होते हैं। मैंने कहा डिस्कवरी चैनल हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डिस्कवरी चैनल के आगे पीछे जो तमाशा होता वो हमको अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए हमने उसको एकदम स्टॉप। हमको भजन बड़े अच्छे लगते सुनने में, लेकिन पुराने गाने फिल्म के सुनने को मिल जाए तो हम अभी भी झूमने लग जाए। लेकिन हमने वो टेप रिकॉर्डर, और अब तो टेप रिकॉर्डर है ही नहीं, अब तो नाम मैं क्या उसको क्या कहते हैं आजकल, जो भी कहते हो टेप रिकॉर्डर खत्म हो गया, हमारे सब टेप रिकॉर्डर वो हमने सब हटा रखे। इसलिए नहीं कि हम वो उसके संस्कार बड़े दृढ़ हो जाते, एक बार की घटना इतनी। अरे हमारे अजामिल ने कितनी बार उस कुपुरुष को वेश्या के साथ और इस प्रकार चेष्टा करते देखा, कितनी देर देखा था, एक ही बार तो देखा था, और वो संस्कार कितने दृढ़ हो गए कि लाके वेश्या को ही घर में बैठा लिया। तो भाई हम आप लोग सब समझदार लोग हो, सत्संगी हो, ये ध्यान रखना कि ऐसी कोई क्रिया न करना जो तुम्हारे संस्कारों को बिगाड़ सके। तो धातु प्लव, जब धातु संप्लव माने जब प्रलय काल आता है, द्रव्य गुण अलग अलग होता है, तो अनाद निधना काला, ये काल में काल का विशेषण अनाद निधना, जिसका न कभी कोई आदि है न जिसका कोई अंत है, ऐसा जो काल है इन सब चीजों को अपनी ओर खींच लेता है, माने काल जो है इन सबको नष्ट कर देता है, यही भगवान की माया है। कुछ नहीं से शुरू हुआ और फिर कुछ नहीं बन करके समाप्त हो गया। अपने को अगर ये ध्यान रहे कि ये हमारे द्वारा ही हमारा बंधन है, हम ही गुणों से गुणों को भुंजाना, उच्च और नीच योनियों में जाते हैं, माया के वर्णन का तात्पर्य यहां माया के वर्णन से नहीं, तुम इस माया के नाटक से अपने आप को कैसे बचा सको, इसके लिए ये राजा जनक को और हमारे अवधूत जी श्रवण करा रहे हैं, उसके माध्यम से वसुदेव जी को श्री नारद जी सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, उन्हीं की वाणी हम आपके सामने दोहरा रहे हैं। श्री रमण बिहारी लाल की जय।